على رسول الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة گزشتہ کل میرے بھائیوں آپ سن رہے تھے مہمان کا اکرام بخاری شریف میں ہے جو آدمی اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کا اکرام کریں اکرام کا مطلب ہے اس کے کھانے پینے اور قیام اور آرام کا بہتر سے بہتر انتظام کرنا ہے یہ اکرام کا مطلب ہے تو وہ گویا جس کا جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کا اکرام کرتا ہے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں کوئی نیکی نہیں کوئی خیر نہیں جو مہمان نواز نہ ہو جو مہمان کے حقوق میں بہتر ہو اگر مہمان آ جائے تو اسے خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو جاتا ہے یہ ابھی بے وقت آ گیا یہ کدھر سے آ گیا یہ کیوں آ گیا ناراض ہو جاتا ہے اس کے ساتھ محبت اور الفت کا برتاؤ کرنا یہ خیر کا سبب ہے اگر ایسا نہیں کرتا تو سمجھو اس میزبان میں گھر والے میں خیر نہیں ہے اچھائی نہیں ہے مہمان نوازی کا نہ ہونا تین چیزوں کی وجہ سے ہے محدثین فرماتے ہیں یا تو اس کے اخلاق اچھے نہیں نمبر دو یا تو پھر بکیل ہے نمبر تین یا تو قطع رحمی ہے ان تین چیزوں کی وجہ سے میزبان کا مہمان کا اکرام نہیں ہوتا اور یہ سارے امور بہت بڑے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہمانوں سے گھبرانا اچھی علامت نہیں ہے مہمانوں سے گھبرانا اچھی علامت نہیں بلکہ اسے باعث خیر اور برکت تصور کرنا چاہیے کہ میرے گھر پر برکت آئی ہے اور ابو شریح کعبی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اس کا حق ایک دین ایک رات اور ضیافت تین دین تین رات مہمانی اور اس کے علاوہ تین دین سے زیادہ وہ صدقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مہمان نوازی تین دین ہے اس سے زیادہ صدقہ ہے۔ تین دین تک تو مہمان نوازی ایمان کی علامت ہے۔ مہمان کو چاہیے کہ اس کے بعد وہ چلا جائے ڈھیرا نہ ڈالے۔ تین دین کے بعد سوچ سمجھ کر چلا جانا چاہیے۔ تین دین کے بعد اہل خانہ کو تنگی میں نہ ڈالے۔ کسی کو جاب کا پرابلم ہوتا ہے، کسی کو کیا ہے، کسی کو کیا ہے، تین دن پورا ہو جائے اپنا راستہ پکڑ لے۔ بازوں کو تو پکڑ کے نکالنا پڑتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں۔ سلیمان خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مہمان کی آمد پر ایک دن ذرا تکلف اور اہتمام سے کام لے، اس کے ساتھ بیٹھے اٹھے ذرا تکلف سے کام لے، اہتمام ذرا کرے، اور اس کے ساتھ تمام دنوں سے زائد نیکی کا برتاؤ کرے۔ کچھ پانی چاہیے بھائی، کچھ یہ چاہیے، ادھر ادھر نیکی کا، اور آخر کے دنوں میں اس سے کم، نمبر دو میں۔ اور نمبر تین میں وہ کہہ رہے تیسرا دن، تین دن گزر جائے تو اس نے گویا اس کا حق پورا کر دیا، اب وہ بیٹھا رہے مہمان خانے میں، جو بھی اپنے کام پر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ اپنا بھی کام کرنا ہے، ورنہ بیوی بچے کو کیا کھلائے گا اگر مہمان کے ساتھ بیٹھا رہے گا روزانہ تین دن سے زیادہ۔ اب رات کو بھی کبھی مہمان آ جاتے ہیں۔ مقدام ابن ماجی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا رات کو آنے والے مہمان کا حق ہر مسلمان پر ہے۔ اس کو کہاں جائے گا رات میں، سوئے گا کہاں، تو ہر مسلمان پر، چاہے وہ غریب مسلمان ہو یا مالدار مسلمان ہو، اس کا تھوڑا احترام کر لیا جائے، رات گزر جائے۔ اگر اتفاق رات میں کوئی آ جائے تو اس کی رعایت سارے محلے والے پر ہے۔ ایسا شخص قیام کے ارادے سے اور رات کے ہونے کی وجہ سے کسی خاص مقصد کے کسی کے یہاں نہیں آیا۔ ہمارے یہاں حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، رات کو مہمان آ گئے ان کے یہاں۔ اب एक अल्लाह का बंदा है, वैसे भी घर में कुछ होता नहीं है नेक लोगों के यहाँ, तो रात को मेहमान आ गए, रात को मेहमान, बहुत परेशान थे। तो उनका एक मुरीद था नान भाई, जो रात को देर तक रोटी बनाता फुना फुना फुना, उसको मैसेज किया, भाई मेहमान आए हैं, आप कुछ खाना बना के ले आओ। वो कहते हजरत अभी लेकर आता हूँ, गरम गरम खाना लेकर आता हूँ। और वो खाना लेकर आया, हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने मेहमान को खिलाया, और खिलाने के बाद उस खाना लाने वाले से कहा, भाई आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए दुआ कर दूं। तो वो भी नान भाई, भी नान भाई अजीब था, उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा बनना है, आपके जैसा बनना है। बाकी बिल्ला बनते बनते कितने साल लग गए ना, अब एक दिन में तो बाकी बिल्ला नहीं बन सकता, ये आपके जैसा बनना है मुझे। तो हजरत ने कहा और कुछ मांग लो, दुआ कर देता हूं, कहने आपके जैसा ही बनना है। अल्लाह अकबर का, चलो रूम में आ जाओ। और अब मुआनका किया, सीने से लगाया, सीने से लगाया, और सीने से लगाने का तरीका भी सीखो भाई, कोई इधर मारता है, कोई इधर मारता है, कोई तो लगाता भी नहीं है सीना, दूर से ऐसा कर लेता है, शायद वो कुछ कोविड लग जाए। अजीब अजीब अंदाज होते हैं लोगों के, और मुलाकात भी करते हैं, कभी दो उंगली से, कभी तीन उंगली से मुलाकात करते, और कभी इतना ही देते, ज्यादा नहीं। मुआनका कर लिया, दबा कर, ये दिल से दिल मुआनका होना चाहिए, उसका दिल इसका दिल, ऐसे मुआनका है, दिल से दिल को मिलाना है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा सहाबाए किराम के साथ। इधर क्या मिलेगा, दिल तो इधर है, वो अल्लाह वालों के दिलों में जो होता है वो जो है। तो दिल से दिल मिलाया, दबाया उसको, उसको छोड़ा, उसको देखो, बाकी बिल्ला को देखो, ऐसा नहीं लगता था कि बाकी बिल्ला ये है या ये है। दुआएं, लेकिन ये अचानक हुआ, उनको तो साल लग गए बाकी बिल्ला बनते हुए, एक दिन तक जिंदा नहीं रहा, फिर उसका इंतकाल हो गया, बर्दाश्त नहीं कर सका, बर्दाश्त नहीं कर सका। जो उलूम, जो फ्यूज, जो नूर अंदर में होते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नूर की तजल्ली जर्रा बराबर बर्दाश्त नहीं कर सके। तो रात को मेहमान आ जाए तो पूरे मोहल्ले वाले, कोई ना कोई उसका जरूर, कोई नहीं तो कहीं भी उसको सोने का इंतजाम किया जाए, अगर भूखा है कहां जाएगा रात में, उसको खाना खिला दिया, जो भी हो सके खिला दो, और उसके सोने का इंतजाम कर लो। ये आम्मतुल मुस्लिमीन पर उसका हक है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। मेजबान का हक मेहमान पर, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेहमान का हक है कि वो उससे रुखसत हो तो मेजबान की कोताही का तस्करा न करे, काचू काचू खौड़ा में लाजे तुमने, वो खाना भी देखने कैसा पकाया उसने, मेजबान से कुछ कोताही हो जाए तो उसका जिक्र न करे। वो सोने भी गया तो बेड तो बहुत ही हार्ड था, मुझे तो नींद ही नहीं आई। मेजबान के घर पर जो खाना खाया, उसके घर पर जो भी हुआ, उसकी कोताही का तस्करा न करे। तुम आए हो, तुम्हारा इकराम के यही काफी है। बाद लोगों को आदत होती है चूनो चिरा करने की, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा कुछ, वो बात तुम्हारे गुजरे भावज ने पूछा, ने मरता हुआ तो भाव ही नहीं पूछा उसने, मुझे कुछ पूछा ही नहीं मुझे उससे, अरे भाई इतनी चाय पिलाई, इतना खाना खिलाया, फुला किया फुला किया, अब तो तुम्हारा कौन सा इकराम किया जाए। तो ऐसा भी होता है, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज बताई है, उसका तस्किरा ना करो बुरे से, उसको को अल्लाह पाक आपको दुआए कलिमा दो, और दुआ देकर निकलो, दुआ देकर निकलो, मेहमान को खिलाए। जिस तरह देखा नहीं आपने वाकिया हजरत अबू तलहा का, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेहमान को घर ले जाओ, घर में खाना इतना है कि सिर्फ मेहमान खाए या बच्चे खाए, लेकिन अंदाज तो देखो अल्लाह के नबी के मेहमान के इकराम का। कहा मैं भी साथ में बैठ जाऊंगा और तुम कुछ बहाने से आना और दिया को बुझा देना, मैं खाली खाली प्लेट में हाथ रखूंगा और ऊपर ले जाऊंगा, मेहमान को ऐसा लगे कि मेजबान भी हमारे साथ खा रहा है। हालांकि खा नहीं रहे थे, क्योंकि इतना ही खाना है कि मेजबानी मेहमान ही खा सकते थे और मेहमानों को खिला दिया। और सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बशारत दी, ये है। तो मेहमान अपना रिज्क लेकर आता है भाई, वो तुम्हारे घर से नहीं खाता। जब भी मेहमान आता है तो अपना रिज्क लेकर आता है। कंजुल उम्माल में अली मुत्तकी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 9 में हदीस नकल की है अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और वो हदीस भी मरफूअन सही, फरमाया मेहमान अपना रिस्क लेकर आता है, लोगों के गुनाहों को दूर करके जाता है। मेजबान के गुनाह भी माफ हो गए भाई, खाना नहीं गया हमारा तो गुनाह भी गया, अल्लाह पाक ने माफ कर दिया। उसके इकराम की वजह से अल्लाह पाक मेजबान के गुनाह को भी माफ कर देता है, इकराम की वजह से। और अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत कंज में है और फिरदौस दैलमी में भी नकल की है, मेहमान लोगों के घर पर यानी जिसके घर जाता है अपना रिस्क लेकर आता है। क्या लेकर आता है भाई? अपना रिस्क। जब जाता है तो मेजबान के लिए मगफिरत का सबब बनकर जाता है, घर वालों के लिए मगफिरत। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, इंसान की नहायत कमजोरी कमजोर आदत है, कमजोरी में से है कि अपने मेहमान से खिदमत ले। मेहमान आया, चलो आओ ना किचन में जरा पकाने लगो ना। मेहमान आया है उसको क्या कहता है, चलो तेरा खिदमत कर लो, गार्डनिंग भी कर लो हमारे साथ। भाई उसका तो इकराम करना चाहिए, बजाय मेहमान ही से तुम काम ले रहे हो। ये इंसान की कमजोरी की निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला से मनकूल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मेहमान के साथ बैठकर खाओ, क्योंकि मेहमान शर्म महसूस करेगा, अकेला अकेला बिठा दिया उसको, उसके साथ बैठ जाओ या पहले सारा खाना ले आओ फिर साथ में बैठ जाओ, बैठ जाओ और बैठ कर खाना खाओ, वो अकेले खाए तो शर्म करेगा। ये इब्न हिब्बान और कंजुल उम्माल की रिवायत है। ये बात समझो, मेहमान की आमद हमारे घर पर अल्लाह का तोहफा है। क्या है भाई? बोझ न समझो इसको, घबराओ नहीं। अबू नुएम ने और कंजुल उम्माल में रिवायत नकल की है, अबू कुरसाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं तो उसे तोहफा भेजते हैं। कंजुल उम्माल की हदीस और अबू नुएम ने अलहिलिया में नकल किया भी है कि जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का मामला करने का इरादा करते हैं तो उसके घर पर तोहफा भेजते हैं। क्या भेजते हैं भाई? अल्लाह का तोहफा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो तोहफा क्या है, वो तोहफा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहमान। क्या है भाई? मेहमान। वो अपना रिज्क लेकर आता है, जब जाता है तो घर वालों की मगफिरत करा कर जाता है। और अगर कोई नेक आ गया तुम्हारे घर पर तो कोई साले आदमी को खिला दिया आपने, कोई नेक आदमी को खिला दिया, कोई रात में रोने वाले को खिलाया। मेहमान मिकदाम रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर किसी का मेहमान हो और वो इसका इकराम न करे ताम में क्याम में तो वो हक के मेहमानी का मुतालबा कर सकता है। भाई तेरे घर तो आया, कुछ तो मेहमानी कर, वो कर सकता, उसका हक है, मेहमान का हक है। वो मेहमान आया सुबह में 8-9 बजे और ये काम पर चला गया, वो बेचारा अकेला अकेला बैठा रहा 5-6 बजे तक। मेहमान की मेहमानी और क्याम और ताम का इंतजाम करना یہ میزبان کا حق ہے. میزبان جو بھی پیش کرے اس کو حقیر نہ سمجھے. میزبان مہمان کو بھی بتایا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, الترغیب و ترہیب میں علامہ منذری نے نقل کی ہے, صحابہ کی جماعت پہنچی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاں ایک جماعت پہنچی, انہوں نے حضرات صحابہ کی خدمت میں روٹی اور سرکہ پیش کیا, وینیگر, یہ بھی بہت بڑا کھانا ہے بھائی, ہاں روٹی اور وینیگر پیش کیا. فرمایا کھائیے, میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وینیگر سرکہ جو ہے کیا ہی اچھا سالن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے زمانے سے کیا ہی اچھا سالن ہے. آدمی کے لیے ہلاکت کی بات ہے کہ بھائیوں کی جماعت اس کے پاس آئے اور جو کچھ ماں حضر ہو اس کے سامنے پیش کرے اور وہ اس کو حقیر سمجھے. مہمان کے سامنے جو کچھ گھر میں ہے, اچانک آ گئے مہمان, بھائی جی حضور جو بھی ہو پیش کر دوں گا, آئیے میرے گھر. اب دوپہر میں 12 بجے مہمان آ گئے, 1 بجے کھانے کے ٹائم پر ایک دم اچانک مہمان آ گئے, تو جو بھی گھر میں حاضر ہو پیش کر دو, جو بھی گھر میں حاضر ہو. لیکن مہمان کو چاہیے کہ اس جو کچھ سامنے اس کو حقیر نہ سمجھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھو سالن کون سا, وینیگر اور ساتھ میں روٹی, کہ روٹی کو وینیگر میں دبو کر کھا لو, حقیر نہ سمجھ. یہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے, اس مہمان کے لیے جو اس کو حقیر سمجھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو کچھ پیش کیا وہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھے. بعض تو کہتے ہیں یہ دال تو انڈیا میں تھی, ابھی انڈیا سے یہاں بھی آ گئی, گوشت کدھر ہے بھائی, گوشت کدھر ہے؟ اللہ اکبر. ابو یعلیٰ کی روایت ہے, آدمی کے بدتر ہونے کے لیے کافی ہے, بدتر ہونے کے لیے کافی ہے جو پیش کیا جائے اس کو حقیر سمجھے. یہ آدمی سب سے بدتر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کبھی کھانے کو جو بھی پیش کیا جائے, کھانا ہے کھا لو, لیکن حقیر حقارت سے نہ دیکھو. اسی لیے حضرت تھامبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے, گھر میں جو کچھ سرکہ ہوتا تھا یا انین ہوتا تھا روٹی سے کھاتے, تو اس وقت وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے, بڑا شکر ادا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کے سامنے تو یہ بالکل معمولی کھانا ہے اور اتنا زیادہ اللہ کا شکر. فرمایا میں کھانے کو نہیں دیکھ رہا ہوں, میں اس ذات کو دیکھ رہا ہوں جس وقت تو اس نے روزی کو تقسیم کیا اپنی مخلوق میں, اس وقت مجھے بھی یاد رکھا ہے, مجھے یاد رکھا اس نے, چاہے معمولی کھانا ہے لیکن اس نے مجھے یاد کیا ہے. اس ذات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے معمولی کھانے کے اندر بھی مجھ جیسے ناکارا کو یاد کیا, مجھ جیسے گنہگار کو اس نے یاد کیا اور سامنے میرے سامنے کھانا ہے. یہ اللہ والوں کی نگاہ کہاں ہوتی ہے, کھانے کو حقیر نہ سمجھے. اسی لیے امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے, التکلف للضیوف, جس میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ امام بخاری نقل فرماتے ہیں. انہوں نے اپنے مہمان حضرت سلمان فارسی کے لیے کھانا تیار کیا, ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ, حالانکہ وہ روزے سے تھے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ مہمان کے کھانے میں تکلف اور اہتمام باعث ثواب ہے. مہمان کے کھانے میں تکلف ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کوئی مہمان ہوتا تھا تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تنگی کے باوجود فکر فرما کر اچھا کھانا پیش کرتے تھے, اچھا کھانا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب درس پورا کرتے تھے, روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو اپنے گھر کھانے کے لیے لے جاتے تھے, اپنے گھر کھانے کے لیے لے جاتے تھے. عجیب, جیسے ہمارے بھائی شیخ العدیز صاحب جب بھی درس بخاری سے نکلتے ہیں, میں نے ہزاروں بار دیکھا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, کر سمجھ دیکھا ہوگا, اکثر مہمان انتظار میں رہتے ہیں, وہاں روز کھانے کا مسئلہ تھا اور گھر میں گویا کہ لنگر ہی لگایا ہر وقت حضرت کے گھر میں. اللہ اکبر, عالی شان دعوت بھی کر دیتے ہیں, वो जो भी है बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, किसी को अजीब अल्लाह ने उनको दिल दिया है। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के घर पर एक मेहमान, दरस बुखारी खत्म हुआ तो चलो घर चलो खाने के लिए ले गए। मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे, जैसे इब्राहिम अलैहि सलाम मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। इब्राहिम अलैहि सलाम का वाक्य तो मालूम है ना, वो घर पर ले गए, एक आखिर में कोई ना मिला तो एक गैर मुस्लिम को ले गए, बगैर ईमान वाले को। वो खाने के लिए बैठा तो इब्राहिम अलैहि सलाम बिस्मिल्लाह पढ़ भाई, मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा, मैं मुसलमान नहीं, मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा, मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े तो खाना नहीं खा सकते। वो उड़ के चला गया, अल्लाह ने मैसेज भेजा, हजरत थानवी रहमतुल्लाह इसको लिखा है ये भाई इब्राहिम मैं इसको देखो ना कितने सालों से खिलाता हूं बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए, और एक दिन तेरा मेहमान बना तूने उसको निकाल दिया। वो तलाश करने गए जल्दी जल्दी उसको, उसको तलाश करके लाए और खाना खिलाया, भाई तेरे को पढ़ना है पढ़ नहीं पढ़े तेरे को खा ले खा ले। अल्लाह मखलूक को रोजी कैसे पहुंचाता, वो कितना सबर करने वाला है। हजरत मदनी के घर ये खाने के लिए बैठे तो इस आदमी ने सवाल किया, हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर कितनी किस्म के खाने थे? ये बात उसने हजरत मदनी से कहा, कहा एक रोटी और कुछ सालन एक होता। आपके दस्तरखान पर तो दो किस्म के खाने हैं, कितने भाई? दो किस्म के, तो आप तो हदीस का फॉलो नहीं कर रहे। हजरत ने देखो कितने सालों से बुखारी पढ़ाते थे, इमाम बुखारी ने बाकायदा बाब कायम किया है कि दो खाने रखना जायज है दस्तरखान पर, और एक ककड़ी रख और खजूर का जिक्र बुखारी में है, दो अलग अलग है ककड़ी और खजूर, उनके हिसाब से था वो, उनके जमाने में जो हाजिर होता था खिलाते थे, आज के जमाने में हमारे हिसाब से। तो हजरत मदनी कह सकते थे मैं इतने सालों से बुखारी पढ़ा तो बुखारी में लिखा है, लेकिन क्या कहा? भाई हम तो है ही दुनिया के कुत्ते, क्या फरमाया? हम तो है ही दुनिया के कुत्ते, हम कहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलो कर सकते हैं। बस खामोश हो गए, कुछ नहीं कहा। कैसे लोग थे? तो अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेहमान के लिए कुछ तकल्लुफ तो करना चाहिए, थोड़ी मीठी डिश भी हो जाए, कुछ तकल्लुफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर न होने के बावजूद भी आप फिक्र फरमाते थे, कुछ न कुछ कहीं से लाकर पेश कर फरमाते थे। याद रखो इमाम गजाली ने और हमारे हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है मेहमान के खाने पर जो खर्च किया जाएगा भाई सुनो उस पर हिसाब नहीं होगा। मेहमान के खाने पर जो खर्च किया जाएगा उस पर हिसाब, हर चीज का हिसाब होगा लेकिन इसका, हजरत फरमाते हैं इसी वजह से असलाफ हमारे जो थे और हमारे अकाबिर इजाम की आदत रही कि अपने खाने में हद दर्जा सादगी फरमाते मगर मेहमान के खाने में निहायत पुर तकल्लुफ बराबर इकराम करते थे हमारे अकाबिर, क्योंकि भाई इन पर जो हम खिलाएंगे इसमें हिसाब नहीं होगा। उस्वतुस सालिहीन में इसको नकल किया है अल्लाह पर। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत तैयबा की तरह हमारी आदत भी हो। इब्राहिम खलीलुल्लाह बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे, चुनांचे कई मील जाकर मेहमानों को तलाश करके लाते थे खिलाने के लिए। अब हुरैरा फरमाते सबसे पहले जिसने मेजबानी की वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, मेजबान बने सबसे पहले। हदीस शरीफ में अपने मुसलमान भाइयों के साथ ताम की मजलिस में जो वक्त गुजरे, मेहमान के साथ ताम की मजलिस में जितना वक्त गुजरे कयामत के दिन उसका भी हिसाब नहीं होगा। मेहमान का इकराम देखो, मेहमान कितनी बड़ी चीज है, घबराना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, उसके खाने का हिसाब नहीं जो स्पेंड किया आपने खाने के इंतजाम में, और उसके कयामत के दिन उस वक्त का भी हिसाब नहीं होगा। ये कीमिया सआदत में लिखा है और इत्तेहादुस सआदा में, जिसमें बहुत सारी बातें मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ले लेते हैं। फरमाया जो अहबाब के साथ मिलकर खाया जाए
उस खाने में भी नहीं, और जो अहबाब मेहमान के साथ बैठकर टाइम निकाला उसमें भी नहीं। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, जो खाना दोस्तों के आगे मेहमान के आगे पेश किया जाए वो हिसाब से मुस्तस्ना है, उसका हिसाब नहीं होगा। तीन खानों का हिसाब नहीं होगा। कितने भाई? तीन खानों का। हदीस शरीफ में आता है तीन खाने ऐसे हैं जिसका हिसाब नहीं होगा। एक वो है जो इफ्तार के वक्त खाया जाए, इफ्तार के वक्त जो खाना खाया जाए, अल्लाह अकबर, वो टाइम ही कितना जबरदस्त है, वो टाइम ही। दूसरा जो सहरी के वक्त खाया जाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह के यहां रमजान कितना महबूब महीना है उसका। और तीसरा वो जो मुसलमान भाई मेहमान के साथ बैठकर खाया जाए, उसके लिए जो तुमने पकाया है बंदे, अल्लाह अकबर। ये बात शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। मेहमान नहीं तो फरिश्ते की आमद नहीं, यह बात इमाम गजाली ने लिखी है। फरमाया अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला की रिवायत है, जिस घर में मेहमान नहीं आता उस घर में फरिश्ते भी नहीं आते। मालूम होता है मेहमान कोई बड़ी चीज है। मेहमान के सामने मा हजर खाना पेश कर देना यह आदत करीमा है सहाबे किराम की। हजरत शकीक बलखी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं और एक साथी हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला की खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने हमें रोटी और नमक पेश किया। क्या भाई, आज पेश करके देखो ना नमक, लेकिन उनके यहां यह हाजिर था भाई, उनके यहां। हमारे यहां तो बहुत कुछ मिल जाएगा, फ्रीज खोलो ना बहुत कुछ मिल जाएगा, 5 मिनट लगेगी, वही समोसे पकौड़े सेटो, वैसे भी बड़ा पड़ा है फ्रीजर, निकालो और गर्म करो, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो उन्होंने रोटी और नमक पेश किया और कहा, अगर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकल्लुब से मना न फरमाते तो मैं तुम्हारे लिए तकल्लुब करता। फरमाया यहां तकल्लुब का मतलब बज़ाहिर वुसअत और गुंजाइश से ज़ायद खर्च करना, जितनी वुसअत इंसान में है इतना तो खर्च करे, जैसी ताकत है जितने पैसे इस हिसाब से मेहमानी। आदाब रुखसत मेहमान, मेहमान को रुखसत करने का अदब क्या है। इब्ने माजा की रिवायत, अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये सुन्नत है आदमी अपने मेहमान के साथ घर के दरवाजे तक जाए, भाई वही रूम में से ठीक है आइयो जजाकल्ला, उसके साथ चले दरवाजे तक उसको रुखसत करे, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक शख्स बतौर मेहमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आपने उसको अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास भेजा, उन्होंने कहा हमारे पास तो पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात इमाम बुखारी ने अदबुल मुफरद में लिखा है, आपने मजलिस में ऐलान किया इस मेहमान को कौन है जो अपनी तरफ ले जाता है या उसकी मेहमानदारी कबूल करता है। अंसार में से एक साहबी बोले, मैं ले जाता हूं, और उसको घर ले गए, बीवी से कहा रसूलुल्लाह का मेहमान है, उसका खिदमत का इंतजाम करो। वो कहने लगी मेरे पास तो इतना ही खाना है जो बच्चों को, जो मैंने अभी वाक्य सुनाया हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला, बच्चे खाएं या तो मेहमान खाए। मालूम होता है इमाम बुखारी फरमाते हैं मेहमान की खिदमत खुद मेजबान करें और उस पर बाब कायम किया, जिससे मकसद तरगीब और ताकीद है। लेकिन सुबह का अगर मेहमान आ गया तो सुबह की मेहमान जिम्मेदारी। अबू करीमा असामी फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में आने वाले मेहमान की मेजबानी हर मुसलमान पर वाजिब है, और अगर सुबह के वक्त भी वहां रहे, वो मेहमान गया नहीं, तो उस वक्त मेहमानी भी उसके जिम्मे है, खा उसे पूरा कर या छोड़ दे, लेकिन जिस घर में सोया। याद रखो कोई मेहमान मेजबान अगर दावत दे ना तो जितनों को दावत दी है ना इतनों को ले जाए, है ना। पहले हदीस सुन लो अबू मसूद रजी अल्लाह तआला की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी अबू मसूद ने, फरमाया आप तशरीफ लाए और आपके साथ 4 आदमी और आ सकते हैं, मुतय्यन कर दिया आप तशरीफ लाए आपके साथ चार हो सकते हो, कार्ड में लिखते हैं ना भाई आपको दावत है, आपके साथ फैमिली को नहीं है। और आजकल क्या होता है, बहुत सारे पीरा हजरात, पीर हजरात, जैसे अभी मेरा जाना हुआ साउथ अफ्रीका, तो मेरा एक जगह प्रोग्राम था, सारे मैंने कहा था जितने मुझसे मुरीद है पहले जब मैं वहां था, करीबन 200 आदमी, बस उन्हीं को दावत दी जाए, बुलाया जाए और खाना खिला दिया जाए उन्हें, तो उन्हीं को दावत दी जाए और उनके मुझे कुछ बातें कहनी है उनको, बहुत साल हो गए। तो अब जाहिर बात है कि दावत थी बारबेक्यू की, और बारबेक्यू में भी वैसे भी लोग तड़पते हैं कब मिले, कभी साउथ अफ्रीकन बारबेक्यू खाइए तो पता चलता है आपको, यहाँ तो वैसे ही भून काला कर देते, वो उनको देखो वो कैसा बारबेक्यू बनाते हैं, वो हफ्ते में दो हफ्ते में हर दो हफ्ते बनाते हैं, और आप एक बार खाएंगे तो मुझे हर हफ्ते खाना है, ये अजीब खाना है उन लोगों का। तो ये बारबेक्यू जो है दावत, अब जब बारबेक्यू की खुशबू आ गई और मस्जिद करीब थी, इशा की नमाज मैंने वहां पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मैं जब वापस आया तो इशा मगरिब के बाद मेरा प्रोग्राम था सबको, और इशा से पहले इशा के बाद खाना था, तो मस्जिद को वहां, तो वैसे बारबेक्यू की खुशबू बहुत दूर दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है, तो मस्जिद में मुसल्ली थे करीबन 200 की दावत, तो 400 आदमी आ गए, कहां से खिलाएंगे 400 को, वो बेचारा किचन में जाता है, बाहर आता है, बाहर जाता है, बाहर आता है, वो कहते हैं मुफ्ती साहब की जियारत के लिए आए। भाई मैंने कहा तेरे घर पर बुला के जियारत करना मुझे, यहां कैसी जियारत है, तेरे घर पर बुला मुझे, खिला मेरी जियारत कर ले, यहां क्या, ये तो तुम बकरे की जियारत करने आए, वो खुशबू लगी है ना उस बारबेक्यू की जियारत करने आए हैं, ये गलत है, किसी ने जितना इंतजाम किया है, जितना इंतजाम किया है इतना, बहुत से मर्तबा पीर लोगों के साथ, पीर लोगों की दावत होती है तो इतना बड़ी, इतनी बड़ी जमात, एक लश्कर, वो बेचारे मेजबान के घर हमला कर देते खाने पर, और वो कभी अंदर जाता है कभी बाहर आता है, कभी अंदर जाता है कभी बाहर आता है, कहां से खिलाएंगे इतने लोगों को, और पूछते हैं तो कहते हैं हजरत के साथ बरकतन आ गए, बरकतन आ गए, हरकतन कर दी घर वालों की, घर वालों को हरकत में डाल दिया बरकत की जगह आपने, ये गलत है। हाँ अल्लाह के नबी ने हमें जो तरीका सिखाया है उसके मुताबिक होना चाहिए। देखिए कहा आप तशरीफ लाइए मेरे घर पर और आपके साथ चार आदमी और आ जाइए, साहबे किराम कहते थे तीन या चार, हदीस में है, आप तशरीफ ले गए तो जाहिरी बात है कि नेक लोगों के साथ मोतकिदीन भी होते हैं ना, वो साथ में हो जाते हैं, हजरत कहां जाते हैं, खला जगह दावत, चलो मैं भी चलता हूं, मेरा भी पेट साफ हो जाएगा, मेरी भी डर साफ हो जाएगी, वो साथ में हो लिए, अल्लाह के नबी जा रहे हैं, चार साहबा हैं और अल्लाह के नबी है साथ में, एक और साहबी ज्वाइंट हो गए रास्ते से, अल्लाह अकबर, पांचवा हो गया। वहां पहुंचे तो अबू मसऊद से कहा बेटे भाई देखो घर में आने से पहले मेरा एक सवाल है, हम तो जो तुमने दावत दी थी मैं और चार वही आ रहे थे, रास्ते से एक और हमारे साथ शरीक हो गए, ये आपकी मर्जी है, उनको तुमने दावत नहीं दी है, साफ साफ कह दिया उनको तुमने दावत नहीं दी है, आप जाने आपकी मर्जी, अगर दावत देना है तो दे दीजिए या तो उनको वापस कर दीजिए, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, साफ साफ कह दिया। तो अगर भाई आपके साथ किसी को ले जाना है, मिसाल के तौर पर मुझे दावत है, दावत दी है और अचानक मेरे घर पर एक आदमी आ गए मेहमान के तौर पर, अब न जावे तो भी मुसीबत है, इसलिए उन्होंने दावत दी है, खाना पकाया है, हम उसके घर नहीं जाए तो नाराज हो जाएंगे, तो मैं फोन करके बतला दो कि भाई मैं तो आने वाला ही था लेकिन अचानक एक और मेहमान आ गया, अगर आप कहें तो मैं इनकी मेहमानी घर पर कर लूं, या फिर आप कहें तो मैं उसको आपके घर ले आऊं, फोन करके बतला दो उसको, ऐसा नहीं कि गए और साथ में मेहमान को भी बगैर पूछे ले गए, ये गलत तरीका है। जिस तरह मेहमान के हुकूक मेजबान पर है, मेजबान के हुकूक मेहमान पर भी है, दावत दी है, जितने को दावत दी इतने को ले जा, बहुत परेशानी होती है बाज मर्तबा उस मेहमान को, खास करके 200 आदमी को दावत दी है और 300 हो जाते हैं, 250 हो जाते हैं, तो मेज़बान को बड़ी परेशानी होती है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुफ्ती तकी साहब के वालिद फरमाते हैं कि बड़े बड़े तहज्जुद गुजार, बड़े बड़े इशराक और चास पढ़ने वाले इस बात को नहीं समझते हैं, वो जाकर मेज़बान को तकलीफ देते हैं, और मेज़बान को तकलीफ देना ये कबीरा गुनाह है। जैसे जीना करना, जैसे चोरी करना, ऐसा ही गुनाह है कि तुमने उस मेजबान को कितनी तकलीफ में डाल दिया, तकलीफ दे दी। ईज़ाए मुस्लिम तो हराम है, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रूल और रेगुलेशन को बदला दिया। मेहमान को दावत है 12 बजे की, अब ये आदमी बैठकर इंतजार कर रहा है, 12 हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आया ही नहीं मेहमान। अब उसको भी और भी काम काज होते हैं, या फिर घर की फैमिली को कुछ और आराम का तकाजा होता है, या और कोई काम काज होते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा भाई, फोन करके बतला दो रास्ते में भाई एक्सीडेंट हुआ है फुला गाड़ी का, और हम बिल्कुल क्यू में खड़े हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, थोड़ा आधा घंटा लेट हो जाएगा, आप सब्र कीजिए हम पहुंच रहे हैं, तो फोन से बता दीजिए ताकि मेजबान को तकलीफ ना हो। यह तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, ऐसा नहीं कि 4 की जगह 10 को ले गए, अरे क्या हरज है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर रजी अल्लाह तआला के घर में कुछ को दावती 1400 ले गए, तो अगर पीर साहब के साथ 50 आदमी आ गए तो क्या हरज है, बरकत हो जाएगी। मैंने कहा भाई तू भी ऐसा कर, तेरे पीर साहब को के उस पटेले में से इस 50 को खिलाओ हाथ डाल के, तो पता चले कि तेरा मौजिजा, तेरी करामत जाहिर कर तेरे पीर साहब की। वो तो अल्लाह के नबी थे, और वो तो ट्रेंच कितने दिन से खोद रहे थे खंडक को। अल्लाह के रसूल ने 2 पत्थर बांधे हैं, उन्होंने 1 पत्थर बांधा है, अल्लाह की तरफ से ये मौजिजा जाहिर हुआ, और नबी मौजिजा अपनी तरफ से नहीं दिखला सकता, अल्लाह ही जाहिर करवाता है। नबी अपनी तरफ से कोई मौजिजा नहीं बतला सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, ये तो गोया अल्लाह की तरफ से सहाबा का इकराम हुआ। ये भूखे सहाबा खंडक खोद रहे हैं, कितने एक-एक जमात है, 20-25 सहाबा की, और कितना डीप खोदना है, सामने दुश्मन है और पूरा मदीना मुनव्वरा, इधर बच्चे औरतें सब है, उनकी हिफाजत करनी है, और कितने दिन के भूखे हैं। ये तो अल्लाह की तरफ से उनकी मेहमानी, और अल्लाह के नबी का मौजिजा जाहिर हुआ। वो दलील भी अजीब देते हैं, वहां देखो ना 1 की जगह 1400 ले गए, तुम करके दिखाओ ना, हम ले आते दूसरे 500, तुम्हारे पीर साहब को कहो पटेले से निकालो 500 को खिलाओ। बात समझ में आ रही, ये सब अपनी तरफ से दलाइल पेश करना बगैर सोचे समझे ये सही नहीं है, ये हदीस का मजाक है, अल्लाह के नबी की जिंदगी का मजाक है। अल्लाह के नबी ने जो तरीका बताया उस तरीके से काम करना चाहिए, और मेजबान को भी मेजबान मारे शर्म के नहीं बतलाता है। इसलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई। आखिरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी के लिए हलाल नहीं कि इतना ठहरे जिससे मेजबान तंग हो जाए, इतना भी न ठहरे, इतना भी न ठहरे मेहमान मेजबान के घर पर कि वो तंग हो जाए। बाज लोग रिश्तेदारी का बहाना बनाकर पड़े रहते हैं, भाई आपने तो बहुत दूर नहीं हगाई निकली आज, तो वो अपनी हगाई बाकी, वो पहले की सगाई हमारी, तो और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, जाने का नाम ही नहीं लेता, तकलीफ का बिल्कुल उसको ख्याल ही नहीं है कि भाई मैं किसी को घर वाले को तकलीफ दे रहा हूं। ठीक, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी, हमारे मौलाना अंजर शाह साहब को दावत दी जाती थी ना, दावत खाने के बाद फरमाते थे तहिन तुम फंतशिरु, खाओ भागो, या अल्लाह के नबी शासन का वाक्य मौजूद है। शाह आपका निकाह हुआ और आप अपने अहलिया के पास जाना चाहते थे, लेकिन सहाबा किराम सब खा लिया और बैठ के बाद सहाबा किराम बात करने लगे, और आप जाना चाहते थे लेकिन शर्म महसूस करते रहे, कैसे बीबी के पास जाएं, वलीमा तो हो गया, कैसे जाएं, तो कहीं चले गए, वापस आए बुखारी शरीफ में है, देखा फिर भी बात कर रहे हैं। अल्लाह को मुस्तकिल कुरान में आयत उतारनी पड़ी, तो किसी के घर खाना खा लिया, अब ऐसी लंबी 10 साल की कहानी शुरू कर दी, उस बेचारे को काम पर जाना है। हाँ, अगर वो फुर्सत में है तो ठीक है, नहीं है, यही हालत हमारी बीमार के पास भी है कि बीमार के पास जाते हैं ना तो बैठे ही रहते हैं, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی بہت بیمار تھے, بزرگ کا واقعہ نقل کیا, بیمار تھے اور وہ ایک آدمی ملنے کے لیے آیا. تو اب ظاہر بات ہے روزانہ صبح میرا یہی حالت تھی, میرا ایک مجھے ملیریا ہو گیا تھا ساؤتھ افریقہ میں, جب ہندوستان سے نیا نیا پہنچا تھا تو ڈاکٹر کو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, کسی نے ٹی بی کا, کسی نے کیا کیا, اور میں سر پر ٹک رہا تھا کہ ملیریا میں سر بہت درد کرتا ہے. تو ایک ہندوستان کا ساؤتھ افریقہ کا پڑا ہوا ڈاکٹر تھا بنگلور کا, اس نے کہا آپ کو تو ملیریا ہے اور بہت خون میں پہنچ چکا ہے. اس نے ٹریٹمنٹ شروع کیا تو آدھے گھنٹے میں بالکل میرا سر بالکل نارمل ہو گیا اس ٹریٹمنٹ کے اوپر. اب اس کے بعد جس ہاسپٹل میں تھا صبح سے شام تک ایک منٹ کی گنے لوگ ملنے 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 ملنے. اب آدمی کو پریشانی ہوتی ہے نا, تو اس بزرگ کا یہی واقعہ ہے نا, آئے بیٹھ بیٹھا رہا اور یہ بات وہ بات یہ بات. بھائی یہ لوگ آتے ہیں پھر بہت دیر لگاتے ہیں, مجھے آرام کا تقاضا بھی ہے, آپ ایسا کرو یہ لوگ آتے رہتے ہیں نا, ایسا نہیں کہا اس کو تو جا یہاں سے, بلکہ یہ لوگ آتے رہتے ہیں نا تو ایسا کرو تم جاؤ دروازہ بند کر دینا. کہا میں حضرت اندر سے بند کر دوں, کیا کہتا ہے اندر سے, یعنی میں بیٹھا رہا ہوں اندر سے بند کر کے, پر میں تم جاؤ باہر باہر سے بند کرو. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جانے کا نام ہی نہیں لیتے. اس لیے مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے رول اور ریگولیشن کو دیکھیں, اس کے حالات کو دیکھیں اور دیکھ کر فیصلہ کریں, اٹھ کے چلیں. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, کھا لیا اب کیا کام ہے بھائی, جو کچھ ملنا تھا مستقل اندر سب کچھ اندر تو ہو گیا, چلو اب دعا دے دو. اور دعا پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک, اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير. اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک 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 سنت بھری پڑی ہے اللہ. اے اللہ تو نے خود قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہیں اپنی زندگی گزارنا ہو تو میرے نبی کی زندگی کی طرح زندگی. اے اللہ کوئی صحابی ایسے نہیں جن کی پوری زندگی موجود ہو سوائے آقا نامدار جناب رسول اللہ. اے اللہ نبی کی قبر کی بھی حالت لوگوں کو معلوم ہے کہاں دفن ہے, نبی کی گھریلو زندگی بھی لوگوں کے سامنے ہے, نبی کی رات کی زندگی, دین کی زندگی, اے الہ العالمین بچپن کی زندگی, جوانی کی زندگی, بڑھاپے کی زندگی, اے اللہ موت تک ساری زندگی اے اللہ موجود ہے, ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. تو نے قرآن میں فرمایا تم میرے نبی کی زندگی کی طرح زندگی گزارو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما, ہمیں صحیح سچے مسلمان بنا دے, صحیح سچے مسلمان بنا دے, اے اللہ سمجھدار مسلمان بنا دے, اخلاق والے مسلمان بنا دے. اے اللہ یا رحمان یا رحیم ایک دوسرے کے, اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے والوں میں سے بنا دے, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی رعایت کرنے والوں میں سے بنا دے. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, آل و اولاد کی مغفرت فرما, ہماری آل و اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے مرحومین ہو چکے ہیں تیرے پاس آ چکے ان کی مغفرت فرما, جو زندہ ہے ان سب کی مغفرت فرما. یہ مجمع تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھا ہے اور لوگ گھروں میں مائیں اور بہنیں سن رہی ہے, اے اللہ یہ سننے کو قبول فرما اور اس حدیث کے صدقے اس سنتوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, ہماری قبر بھی بنا دے, ہماری آخرت بھی بنا دے, جہنم سے بچا لے, جہنم سے بچا لے, جہنم سے بچا لے, جہنم کی آگ سے بچا لے, جہنم کے دھوئے سے بچا لے, جہنم کی تپش سے بچا لے, جہنم کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ تیرے غضب سے ہماری حفاظت فرما, تیرے غصے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ ہم تجھ سے الہ العالمین تیرے غضب سے معافی مانگ رہے ہیں, اللہ میں معاف کر دے, اللہ میں معاف کر دے, تو معافی دینے کو پسند کرتا ہے, اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ یا اللہ بقیہ دین کے ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما, یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما, جنت الفردوس نصیب فرما, جنت الفردوس نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان جو مانگا تا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل سے کرم سے رحم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد والی وسلم.